लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 17 जनवरी को वैटिकन स्थित प्रेरितिकावास की लाइब्रेरी से देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रेटेली ए सोरेल्ले बोनजोर्नो,
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
Il Vangelo di questa seconda domenica del tempo ordinario presenta l'incontro di Gesù con i suoi primi discepoli.
सामान्य काल के इस दूसरे रविवार का सुसमाचार पाठ यीशु का उनके प्रथम शिष्यों से मुलाकात को प्रस्तुत करता है। दृश्य यीशु के बपतिस्मा के एक दिन बाद यद्दन नदी का है। स्वयं योहन बपतिस्ता ने उन दोनों को यह कहते हुए मसीह की ओर इंगित किया, देखो ईश्वर का मेमना, और दोनों ने बपतिस्ता के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी, आप कहाँ रहते हैं? संत पापा ने कहा,
यीशु non risponde abito a Cafarnaum o a Nazaret,
कि यीशु ने नहीं कहा कि मैं कफरनाहुम में रहता हूँ या नाजरत में, बल्कि कहा, आओ और देखो। उन्होंने देखने के लिए टिकट नहीं दिया, बल्कि मुलाकात करने का निमंत्रण दिया। इन दोनों ने उनका अनुसरण किया और उस दोपहर को वे उनके साथ ही रहे। यह कल्पना करना कठिन नहीं होगा कि वे उनके साथ बैठ गए, सवाल पूछे और उससे भी बढ़कर उन्हें सुने, यह महसूस करते हुए कि जितना वे प्रभु को सुन रहे थे उनका हृदय उतना ही उद्दीप्त होता जा रहा था। उन्होंने उन शब्दों की खूबसूरती को महसूस किया जो उनकी बड़ी आशा का जवाब दे रहा था, और अचानक उन्होंने पाया कि जब शाम हो रही थी उनके हृदय में एक ज्योति प्रज्वलित हो रही थी जिसको सिर्फ ईश्वर प्रदान कर सकते थे। यहाँ एक चीज हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि उनमें से एक 60 या उससे कुछ अधिक सालों बाद सुसमाचार में लिखता है, उस समय शाम के लगभग 4 बज रहे थे। उसने समय का जिक्र किया है, यह एक चीज है जो सोचने के लिए प्रेरित करता है। यीशु के साथ हर सच्ची मुलाकात की सजीव याद रह जाती है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप अनेक मुलाकातों को भूल सकते हैं, किंतु यीशु के साथ सच्ची मुलाकात की याद सदा बने रहती है। इन लोगों ने कई वर्षों बाद भी समय को याद रखा। इस सुखद मुलाकात को वे कभी नहीं भूल सके जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। उसके बाद जब वे मुलाकात से बाहर आए और अपने भाइयों से मिले तो उनका हृदय इस आनंद एवं प्रकाश से नदी की तरह भरा हुआ था। दोनों में से एक अंद्रिया ने सिमोन से कहा, हमें मसीह मिल गए हैं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यीशु ही मसीह हैं। संत पापा ने कहा,
Fermiamoci un momento su questa esperienza dell'incontro con Cristo.
आइए हम ख्रिस्त से मुलाकात के इस अनुभव में कुछ देर रुक जाएं, जो हमें अपने साथ रहने के लिए बुलाते हैं। ईश्वर का बुलावा उनके प्रेम की एक पहल है। वे ही हैं जो हमेशा पहला कदम उठाते हैं। वे आपको बुलाते हैं, ईश्वर जीवन के लिए बुलाते हैं, वे विश्वास के लिए बुलाते हैं, और वे जीवन में एक विशेष स्थिति के लिए बुलाते हैं। वे आपको यहाँ चाहते हैं। ईश्वर की पहली बुलाहट जीवन के लिए है, जिसके द्वारा वे हमें व्यक्ति बनाते हैं। यह एक व्यक्तिगत बुलावा है, क्योंकि ईश्वर रिश्तों की श्रृंखला नहीं बनाते। ईश्वर हमें विश्वास के लिए बुलाते हैं और हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। अंत में ईश्वर हमें एक खास स्थिति के लिए बुलाते हैं। वैवाहिक जीवन, पुरोहिताय जीवन या समर्पित जीवन में अपने आप को देने के लिए बुलाते हैं। ईश्वर की योजना को पूरा करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसको उन्होंने हम प्रत्येक के लिए बनाया है। यह प्रेम की योजना है। ईश्वर हमेशा बुलाते हैं। यह हर एक विश्वासी के लिए एक बड़ा आनंद है और इस बुलावे के प्रत्युत्तर हेतु ईश्वर की सेवा एवं भाई बहनों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। संत पापा ने कहा, प्रभु के बुलावे के सामने जो हजारों तरीके से हमारे पास आते हैं, हमारा मनोभाव अस्वीकार का हो सकता है। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं अस्वीकार करता हूँ क्योंकि यह मेरी आकांक्षा के विपरीत है। मुझे इसलिए भी डर लगता है क्योंकि यह बहुत कुछ मांग करता है एवं आरामदायक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा होगा कि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। एक शांतिपूर्ण जीवन ही अच्छा है। ईश्वर वहाँ रहे, मैं यहाँ रहूं। किंतु संत पापा ने कहा कि ईश्वर का बुलावा प्रेमपूर्ण बुलावा है। हमें प्रेम को पाने की कोशिश करना है जो हर बुलावे के पीछे है, और इसका उत्तर प्रेम से ही दिया जाना चाहिए। यह एक भाषा है, एक बुलावे का प्रत्युत्तर है जो प्रेम से आता है, सिर्फ प्रेम से। शुरू में यह एक मुलाकात है, यीशु के साथ मुलाकात, जो पिता के बारे हमसे बातें करते हैं। वे हमें उनके प्रेम के बारे बतलाते हैं। उसके बाद हम में भी स्वतः वह इच्छा जागृत होती है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बतलाएं। मैंने प्रेम से मुलाकात की है, मैंने मसीह से मुलाकात की है, मैंने ईश्वर से मुलाकात की है, यीशु से मुलाकात की है, मैंने अपने जीवन के अर्थ को समझा है। एक शब्द में हम कह सकते हैं, मैंने ईश्वर को पाया है। संत पापा ने कुंवारी मरियम की याद करते हुए कहा,
La Vergine Maria ci aiuti a fare della nostra vita un canto di lode a Dio.
कुंवारी मरियम हमें अपने जीवन को ईश्वर की स्तुति के गीत बनाने में मदद करें, उनके बुलावे का प्रत्युत्तर देने एवं उनकी इच्छा को दीनता तथा आनंद के साथ पूरा करने के लिए। किंतु हम इस बात को भी याद रखें, हम प्रत्येक के लिए जीवन में एक ऐसा पल रहा है जिसमें ईश्वर की उपस्थिति एक बुलावे के साथ स्पष्ट रूप से महसूस की गई है। हम उसे याद रखें, उस पल में वापस जाएं, ताकि उस समय की याद यीशु के साथ हमारी मुलाकात को हमेशा नवीकृत करे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Et concepite de Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
आमीन।
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न लोगों की याद की तथा उनका अभिवादन किया। उन्होंने इंडोनेशिया में भूकंप से पीड़ित लोगों की याद करते हुए कहा,
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia.
मैं अपना सामीप्य इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप के लोगों के प्रति व्यक्त करता हूँ जो भयंकर भूकंप की मार झेल रहे हैं। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मौत के शिकार हुए हैं, घायल हैं एवं अपना घर एवं नौकरी खो दी है। प्रभु उन सभी को सांत्वना एवं शक्ति प्रदान करे जो राहत कार्यों में लगे हैं। संत पापा ने इंडोनेशिया में भूकंप पीड़ितों एवं विमान दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम एक साथ सुलावेसी के भाई बहनों एवं विमान दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पिछले शनिवार को घटित हुई। उन्होंने विश्वासियों के साथ प्रणाम मरियम की प्रार्थना की। तत्पश्चात संत पापा ने इटली में कैथोलिकों एवं यहूदियों के बीच वार्ता को बढ़ाने एवं मजबूत करने के लिए मनाए जाने वाले दिवस की याद की और कहा, मैं खुश हूँ कि यह प्रयास 30 सालों से जारी है और आशा करता हूँ कि यह भ्रातृत्व एवं सहयोग का प्रचुर फल उत्पन्न करेगा। उसके बाद संत पापा ने ख्रिस्त एकता प्रार्थना सप्ताह का स्मरण दिलाते हुए कहा, कल एक महत्वपूर्ण दिवस है, ख्रिस्त एकता हेतु प्रार्थना सप्ताह शुरू हो रहा है। इस साल की विषय वस्तु में यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और तुम बहुत फल लाओगे। सोमवार 25 जनवरी को हम इस प्रार्थना का समापन संत पौलुस महागिरजा घर में रोम के ख्रिस्ते एकता के प्रतिनिधियों के साथ संध्या प्रार्थना द्वारा करेंगे। हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि यीशु की इच्छा पूरी हो जाए कि हम सब के सब एक हो जाएं। एकता हमेशा संघर्ष से बड़ी होती है। और अंत में संत पापा ने संचार माध्यमों द्वारा जुड़े सभी भाई बहनों का अभिवादन किया तथा अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार को प्रेरितिक भवन के पुस्तकालय में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि कल एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन में ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह शुरू होती है। संत पापा फ्रांसिस ने बताया कि इस साल की थीम येसु के अनुरोध पर प्रकाश डालती है कि हम उनके प्यार में बने रहें ताकि हम अधिक फल उत्पन्न कर सकें। उन्होंने याद दिलाया कि 25 जनवरी को रोम के बाहर संत पौलुस महागिरजा घर में रोम के अन्य कलीसियाओं और ख्रिस्तीय समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर संध्या वंदना के साथ ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह का समापन होगा। संत पापा ने कहा, आइए इन दिनों में हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि यीशु की इच्छा पूरी हो सके, हम सब एक हो सके। एकता हमेशा संघर्ष से बड़ी होती है। तब संत पापा फ्रांसिस ने यह भी कहा कि इटली में कैथोलिकों और यहूदी भाइयों और बहनों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए 32वां दिवस मनाया जा रहा है। संत पापा ने उम्मीद जताई कि यह प्रक्रिया जो 30 वर्षों से चली आ रही है भ्रातृत्व और सहयोग के फल ला सके। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को 3 मुद्दों पर 3 ट्वीट किया। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार पूजन विधि के लिए चयनित सुसमाचार में चेलों के बुलावे पर चिंतन करते हुए सभी ख्रिस्तियों को ईश्वर के बुलावे का प्रत्युत्तर खुशी से देने हेतु प्रेरित करते हुए ट्वीट किया। संदेश में उन्होंने लिखा, ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को अपने प्रेम में बनाया है और ईश्वर के प्रेम का जवाब हर विश्वासी को बड़ी खुशी के साथ ईश्वर और अपने भाई और बहनों की सेवा करते हुए देना है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने इटली के कैथोलिकों और यहूदियों के बीच आपसी सहयोग हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, आज इटली में कैथोलिक और यहूदियों के बीच संवाद के गहन और विकास के लिए दिवस मनाया जाता है। मैं इस पहल से प्रसन्न हूँ जो 30 वर्षों से चली आ रही है और मुझे आशा है कि यह भ्रातृत्व और सहयोग के प्रचुर फल वहन करेगी। तीसरे ट्वीट में संत पापा ने इंडोनेशिया के भूकंप पीड़ितों, उनके प्रियजनों और सहायता कर्मियों के लिए, साथ ही शनिवार को हुए हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। संदेश में उन्होंने लिखा, आइए हम इंडोनेशिया के सुलावेसी में हुए भयंकर भूकंप से पीड़ित हमारे भाइयों और बहनों के लिए एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु उन सभी को सांत्वना दे और उन सभी राहत कर्मियों के लिए भी हम प्रार्थना करें जो लोगों की सहायता प्रयासों में लगे हुए हैं। आइए हम इंडोनेशिया में हवाई जहाज दुर्घटना के पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना करें। विदित हो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में शुक्रवार रात को आए शक्तिशाली भूकंप में कम 42 लोगों की मौत हुई। 6.2 तीव्रता वाले इस भूकंप से बड़ी संख्या में लोग घायल और बेघर हुए हैं। राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी के मुताबिक 600 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शनिवार 16 जनवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरते हुए महज कुछ समय बाद ही बोइंग 737-500 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 62 लोग सवार थे। राहत एवं बचाव दल के सदस्यों को जावा के समुद्र से रविवार सुबह मानव अवशेष, फटे कपड़े और धातु के कुछ टुकड़े मिले हैं। उधर मार्च में होने वाली संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा की तैयारी में खलदई प्रतिधर्माध्यक्ष लुइस राफेल साको ने एक प्रार्थना बनाई है, जिसे इराक के सभी गिरजाघरों में विश्वासी रविवार 17 जनवरी से हर रविवार को प्रार्थना का पाठ करेंगे। इराक को संत पापा फ्रांसिस का इंतजार है और इराक प्रार्थना करती है कि संत पापा की यात्रा न केवल घटना मात्र हो, बल्कि लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही हिंसा और विभाजन को संवाद द्वारा निपटा जा सके और देश में अमन शांति आए। संघर्ष ग्रस्त राष्ट्र न केवल सीरिया के साथ बल्कि अपनी सीमा के भीतर न सीरिया से मोसुल के क्षेत्र में भी तनाव का अनुभव करती है, जो 2014 और 2017 के बीच इस्लामिक स्टेट की राजधानी थी। मोसुल में सामूहिक कब्रों से हजारों लाशों का पता लगाना जारी है। इस्लामिक स्टेट के आतंक के तहत वहां शासन करने वाले आतंकवाद का संकेत मिलता है। संत पापा फ्रांसिस 5-8 मार्च 2021 को इराक की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। इस दौरान वे बगदाद, मोसुल, काराकोश और उर के मैदान का दौरा करेंगे। संत पापा की यात्रा की घोषणा के तुरंत बाद प्राधिधर्माध्यक्ष साको ने इराकी लोगों को लिखा कि वे संत पापा के स्वागत के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करें। उन्होंने कहा कि संत पापा पर्यटक या लक्जरी यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जो अनिश्चितता के समय सभी के लिए आराम का संदेश देता है। हमें इसे एक महान बदलाव का अवसर बनाना चाहिए ताकि हमारे बीच विश्वास और आशा एक प्रतिबद्धता बन जाए। उधर दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम गुरुवार को चीन के वुहान शहर में पहुंच गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोविड-19 पर आपात समिति के सत्र के दौरान ये जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक नियमों के तहत आपात समिति गठित की गई थी, जिसका दायित्व सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के मुकाबले में वैश्विक जवाबी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। यूएन एजेंसी प्रमुख के मुताबिक टीम के 15 में से अधिकांश सदस्य अब वुहान पहुंच गए हैं, जबकि 2 सदस्य सिंगापुर में कोविड-19 परीक्षण के नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले टीम के सभी सदस्यों के घरों में अनेक पीसीआर और एंटीबॉडीज टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।